ہر عضو کو گناہ سے بچانے کے حوالے سے کچھ ہماری تربیت فرمائیں کہ صبح صبح اگر یہ ذہن بنا بھی لیں تو پورا دن اس کی یاد کیسے قائم رہے اور ہم اپنے ان اعضاء کو گناہوں سے کس طرح بچائیں، گناہ کرتے ہوئے یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس حوالے سے اگر کچھ تربیت فرمائیں.
پہلے تو بنیادی بات تو ہے نا کہ اس کا علم بھی ہو کہ ہاتھ سے کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، پاؤں سے کون سے، آنکھوں سے، کان سے، کیونکہ آج کل تو معلومات کی بڑی کمی ہے. دنیاوی معلومات بہت ہوتی ہے، پڑھا لکھا بھی کہلاتا آدمی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے قرآن کریم بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا یہ پڑھا لکھا آج کل کا بیچارے کو، نماز کے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتے، وضو کا بھی کوئی مطلب نہیں کہ فرض وغیرہ اس کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہمارے عرف میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو تھوڑا انگلش بول لے. پہلے تو یہ کہ مہلکات، مہلکات ہے مہلک کی جمع، مہلک معنی ہلاک کرنے والی چیز جو برباد کر دے، ہلاک کر دے. تو مہلکات یعنی وہ اعمال کہ جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کی معلومات یہ فرض ہے. اب جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے تو اب کیسے بچے گا؟ غیبت کی تعریف ڈیفینیشن جانتا ہی نہیں، غیبت بولتے کس کو ہے، تو بچے گا کیسے؟ تکبر یہ بھی مولک ہے. اب تکبر ہے ویسے باطنی طور پر اس کا اظہار بازو کا تو ہو جاتا قرائن سے، اب تکبر کا پتہ ہی نہیں کہ تکبر ہے کیا چیز، اب بچے گا کیسے اس سے؟ تو ہر چیز کی جو جو گناہ ہیں ان کی تعریفات یعنی ڈیفینیشنز کی معلومات ہو اور اس کا علاج بھی معلوم ہو کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کئی گناہ ہیں کہ یہ ہمارے بہت ہی آسانی سے اور بلا تکلف کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی معرفت نہیں ہے کہ یہ گناہ، پہچان ہی نہیں ہے، یا تھوڑی بہت پہچان ہے بھی تو آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے نقصانات کا اس کو علم نہیں ہے. نقصانات معلوم ہو، بچنے کے فوائد جانتا ہو تو جب بھی تو بچے گا نا. جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لیتا ہے، بچے کے لیے رسی اور سانپ ایک ہی چیز ہے، اس کو شعور نہیں ہے. ایسا چھوٹا بچہ جو نہ سمجھے، اور بڑا سانپ کے نام سے بھی تھوڑا چوکن نہ ہوتا ہے، اور اگر ابھی کوئی چیخے کہ سانپ سانپ تو میرا خیال ہے مجھے سننا چھوڑ کر سب ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے، ٹکرا جائیں گے آپس میں. اس لیے کہ سانپ کی ہمیں معرفت ہے، ہمیں پہچان ہے، اور جو نادان بچہ اس کو پہچان نہیں ہے. تو چونکہ گناہوں کی ہمیں پہچان نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، پھر اس کی ہلاکت خیزیوں سے نا آشنائی ہے، یوں بھی ہم اس سے بچ نہیں پاتے. اور گناہ کر 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 کے دل جو ہے نا وہ ایسا سیاہ ہو گیا، ایسا زنگ ہو گیا کہ اب وہ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی. ابھی چند منٹ کے لیے تو چلو ہم سن لیں گے اور یہ اندازہ ہے کہ ابھی اذان ہو جائے گی نماز کے لیے چلیں گے بس گھر سو جائیں گے جا کے، اگر رات جاگے ہیں تو، ورنہ کام دھندے پہ چڑھ جائیں گے. اور دنیاوی طور پر آدمی فلم دیکھتا ہے تو تین گھنٹے، ڈھائی گھنٹے، بلکہ ایسے سے ابھی کل ہی میں نے مدنی چینل پر ایک پٹی چل رہی تھی کہ میں روزانہ رات کو دو تین فلمیں جب تک نہیں دیکھ لیتا میں سوتا نہیں، میرے کو چین نہیں پڑتا، اس طرح کی پٹی میں نے دیکھی. اور الحمدللہ اب مدنی چینل پر میں نے مدنی مذاکرات دیکھ کر توبہ کر لیے، فلمیں چھوڑ دی. آج رات کو ہی میں نے مدنی مذاکرے کے بعد جو کچھ کلام وغیرہ پڑھا جاتا تھا उसमें ये पट्टी चल रही थी। तो अपने तासुरात और ईसाई भाई भेजते रहते हैं, मदनी बाहर है, कहने के इस गुनाहों के लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई वक्त नहीं है। दिल भी नहीं लगता, मज़ा भी नहीं आता। हालांकि दुनियावी उलूम पैसों से हासिल किए जाते हैं, बड़े पैसे देने पड़ते हैं, और दीनी उलूम मुफ्त मिलते हैं। जैसे कि आप दुनियावी कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है कि इसकी दाखिला फीस भी होती है, फिर इसका जो भी माहाना सालाना अखराजात वो अपनी जगह पर होते हैं। और जामियात, जैसे अपने जामियतुल मदीना दावत इस्लामी के, इसमें मुफ्त में क़याम की सहूलत दी जाती है, कि रहो भी यहाँ, तीनों टाइम खाओ भी मुफ्त, और यार पढ़ लो, कोई फीस भी नहीं। क्या किताबें? किताबें भी जरूर नहीं है, हम दे देंगे आपको, आप किसी तरह इल्म दीन हासिल करो। लेकिन लोग आपको पता के भागते हैं, कोई पजीरा ही नहीं है, ना घर वालों की तरफ से पजीराई है, ना और भी जो मतलब है ना, पजीराई नहीं है। दुनिया विलूम की पजीराई है, इल्म दीन की पजीराई नहीं, दीनी मदारिस की कोई पजीराई, कोई हौसला अफजाई इनके साथ ऐसी नहीं है जैसे दुनियावी उलूम वालों की पजीराई और हौसला अफजाई है। और हम हैं मुसलमान, अगरचे हमको अपनी मुसलमानी का पता नहीं है, लेकिन हैं मुसलमान। अब जिसको मुसलमान नाम के नाम मुसलमानों वाला काम हमारा जैसा भी है, सब जानते हैं। तो इसकी मालूमात के लिए दावत इस्लामी का मदनी माहौल अपनाना बहुत मुफीद है। दीनी कुतुब का मुतालआ किया जाए, ये भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। बयानात, VCDs जो मकतबतुल मदीना से हासिल हो सकती हैं, वो लेकर सुने तो इंशाअल्लाह इस तरह की मालूमात होंगी। जब आपका दिल चोट खाएगा, मालूमात होंगी, तो फिर ये नियत जो आपको बताई गई, उस नियत पर इंशाअल्लाह अज्जा वजल आप कारबंद हो सकेंगे। वरना खाली वर्बली नियत, बल्कि जहन भी काम नहीं करता, खाली नियत कर ली, दोहरा ली, तो इससे कुछ हासिल नहीं है। अलबत्ता अगर नियत को समझकर कोई नियत करता है कि आज का दिन में आँख, जबान, कान, हाथ, पांव वगैरह सबको गुनाहों से बचाते हुए फजूल इस्तेमाल से भी बचाऊंगा, तो इस तरह ये नियत करने से ये कि अगर वाकई दिल में ये नियत है, तो इस नियत का सवाब जरूर मिलेगा। कि हदीसों में नियत की फजीलत बहुत है, नियत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देगी, ये भी एक हदीस शरीफ है। तो अच्छी नियत होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह सीख भी जाएंगे और सीखने की कोशिश भी की जाए, हाथ पर मारे जाए इसके लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم। हसद के बारे में आज सिलसिला है, तो जब भी कोई इस तरह का ना, जैसे हसद है या तोहमत है, तो गीबत है, तो झूठ है, ये बहुत सारे मौलिकात हैं, जब तक इनकी डेफिनेशन तारीफ पता नहीं होगी कि हसद होता क्या है। जैसे हसद के तो हसद होता है, जब पता ही नहीं होगा तो आदमी बचेगा कैसे। तो ये हसद ये मौलिकात में से तबाह करने वाले अफ़आल, बर्बाद करने वाले कामों में से ही है हसद, और ये गुनाह भी है। तो हसद की तारीफ ये है कि किसी की नेमत देखकर ये तमन्ना करना कि ये नेमत उससे जाय हो जाए, ये अलाजत ने यह तारीफ की है, उसकी नेमत जो उसके हाथ से निकल जाए, जाया हो जाए। तो ये हसद बहुत सारों में पाई जाती है, यहां तक के छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये तो हमें दर्श देते होते हैं गालिबन, कि हम भले हसद करें, तुम मत करो, तुम हम पर कलम चलेगा, हम मरफूल कलम, हम पर कलम नहीं चलेगा। तो एक छोटे बच्चे को आप गोद में लो, दूसरा भी छोटा बच्चा, तो वो बस मारामारी कर देगा, बाजू का रोएगा, चीखेगा, इसको बिठाया है तो एहतजाज करेगा अपनी जबान में, तो मुझे क्यों नहीं बिठाया, इसको क्यों बिठाया, मुझे भी बिठाओ। ये शायद घरों में ये मनाजिर आपने देखे हों। बड़ों में भी हसद पाया जाता है कि एक की और नेमत देखकर वो जी चाहता है कि उसकी नेमत छिन जाए। मिसाल के तौर पर कोई बहुत अच्छा मुबल्लिग है, अच्छा बयान करता है, ये मजहबी तबके में भी होता ही है, अच्छा मुबल्लिग है, अच्छा बयान करता है, और मैं इतना अच्छा बयान नहीं कर सकता, तो अच्छा जो बयान करेगा सर उसको मान ज्यादा मिलता है, इज्जत ज्यादा मिलती है, लोग उसकी वाह वाह ज्यादा करते हैं, तो उसको आखिरी में बयान मिलेगा अगर दो चार मुबल्लिग हों, और जो कम यानी कि ज्यादा अच्छा बयान नहीं कर सकता उसको जल्दी जल्दी मौका मिलेगा, तो खामखा शैतान उसको पिन मारेगा, हसद करेगा कि आप देखो मेरे को शुरू में बयान दिया और थोड़े से आदमी है, अब ये सारे जमा हो जाएंगे ना तो भाई ये नवाब साहब अब बयान करेंगे, तो ये जी चाहेगा कि इसका गला खराब हो जाए तो अच्छा उसको पता चले ना बयान कर सके तो अच्छा, अभी अगर बयान नहीं कर सका तो दिल में खुशी होगी, गला बैठ गया तो खुशी होगी, बयान के दौरान एकदम खांसी उठी उस मुबल्लिग के तो दिल खुश होगा, और जी चाहेगा कि बस ये, तो अब ये दिल में खुशी पैदा होना ये अपनी जगह पर है, अलग चीज है, लेकिन ये ख्वाहिश करना कि इसको खांसी उठे, इसका गला बैठ जाए और लोग इससे मुतासिर ना हो वगैरह, जो ये नेमत जो उसको मिली अच्छी आवाज की वगैरह, तो ये इससे छिन जाए, ये जाया हो जाए, बोल ना सके, ये हसद नात ख्वानों में भी ये पाया जाता होगा, सब में, जब भी मैं बात करता हूँ सबके लिए नहीं करता, लेकिन होता है कुछ ना कुछ बाजों में, जिसकी बहुत अच्छी आवाज होती है जाहिर है कि वो उसका बहुत इज्जत होती है, वो शोहरत होती है, लोग दस्त बोसी कदम बोसी सब कुछ करते हैं, और जिसकी आवाज बिचारों की इतनी नहीं होती वो जल्दी जल्दी पढ़ाकर फारिग कर देते हैं, उसको थोड़ा पढ़ाते हैं, उसको ज्यादा पढ़ाते हैं, तो इस तरह वो छोटे नाचवान के दिल में भी ये पैदा होता होगा कि इसकी आवाज बैठ जाए तो अच्छा, इसका गला बैठ जाए और इसकी आवाज खराब हो जाए, ये इसको जी चाहेगा, तो ये अगर ये तमन्ना करेगा कि इसकी आवाज बैठ जाए, इसको जो नेमत मिली है खुश इलाहानी की ताल्लुक की आवाज से, तो ये इसकी आवाज खराब हो जाए, तो ये हसद, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, हदीस शरीफ, तो आग जो है ना लकड़ी को कितनी बेदर्दी से खाती है, चाहे आप शीशम की लकड़ी डालो या कांटे की शाख डालो, और उसमें जलाना ही है, काम ही जलाना है, तो बहरहाल हदीस शरीफ में फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, तो इससे बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए, हर मामले में होता है हसद, उमूमन दो दुकानदारों में हसद होगा, दो हकीमों में, दो डॉक्टरों में, बस ये इसका इसकी दवा में इतना असर है, ये इतना जहीन है, मरस पकड़ लेता है, ये यूं हो जाए और ये सारी इसकी अकल जायल हो जाए, ताकि वो इसका मतलब बहुत चलता है, टूट जाए, इसकी क्लिनिक बहुत चलती है, टूट जाए, मेरे पास सब मरीज आ जाए, तो बारह लेके हर तरह से जो भी ये तबका जितना भी इसमें देख ले, हसद होता है, दो बहू घर में होगी तो एक बहू का अगर ज्यादा मान है, इज्जत है, तो दूसरी बहू को उससे हसद होने का पूरा पूरा इम्कान होता है, और कभी ये भूल करेगी तो इसको खुशी होगी, अच्छा की और ये भी सास की नजर से गिरे, तो यूं हसद कि मतलब ने बहुत तबाहकारियां हैं, और बाद औकात हसद की वजह से आदमी बहुत बड़े बड़े जराइम भी कर डालता है, तो अब इससे बचना, कि यह हसद क्या है ये भी सीखना फर्ज, इसका इलाज सीखना भी फर्ज है, क्योंकि ये मौलिकात में से, और जो भी इस तरह के गुनाह इनका सीखना फर्ज होता है, इसके जरूरी आकाम, तो इसका इलाज करने के लिए बुनियादी बात, किसी भी चीज से किसी चीज को करना हो, कोई नेकी करनी हो तो उसके फजाइल पर नजर होगी तो नेकी करने में वो रगबत मिलेगी, और अगर किसी गुनाह से बचना हो तो उसका अजाब जानने से बचने का जहन बनेगा, तो इसलिए हसद की बुराइयों को जहन में रखें, और इससे इस बुराइयों और इसके अजाबों, इसकी सजाओं पर नजर रखे, इसके नुकसान पर नजर रखे, तो इस तरह हसद से बचेगा। یہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل ہے اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس طرح آپ ذہن بنائیں گے تو یہ بھی ایک علاج کی صورت ہے کہ حسد سے بچت ہوگی. اچھا دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ اس کی آواز اچھی ہے میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے, تو اب یہ حسد پیدا ہوا جس کی آواز اچھی نہیں ہے اس کو, تو یہ یوں غور کرے کہ اس کو اچھی آواز کس نے دی؟ اللہ نے دی, اور میری اچھی آواز نہیں ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے. تو یہ اللہ نے اس کو اچھی آواز دی, مجھے کم اچھی آواز دی, یہ تقسیم اللہ تعالی نے کی. تو حسد کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. گھوم پھر کر جو بات جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی آواز کیوں دی, اس کو مالدار کیوں کیا, مجھے غریب کیا, یہ بندہ بولتا نہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو مالدار کیوں کیا, مجھے غریب کیوں رکھا. اگر واقعی کوئی اللہ پر اعتراض کرے تب تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن حسد کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اعتراض فی نفس ہی کر نہیں رہا. لیکن یہ احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے کہ یوں مطلب یہ کہ حسد کرنے والا گویا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہے, یہ ہے بہت خراب یعنی خطرناک بات ہے. تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر میں راضی ہوں, یہ ذہن بنائے. میں اس کو مالدار بنایا, مجھے غریب بنایا, میرے پاس تو سائیکل بھی ہے تو ٹوٹی پھوٹی ہے, اس کے پاس تو چمکیلی کار ہے, میرے پاس بہت ہلکا پھلکا کوارٹر ہے, اس کے پاس تو بہت بڑا ویلا ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ حسد پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس کو اس نے بنگلہ دے دیا, اس کو کار دے دی, اس کو یہ دے دیا وہ دے دیا اور آپ کو یوں کر دیا. تو اس کی مرضی ہے, اس میں بہتری ہے. اس کو مالدار کیا, آپ کو غریب کیا, اس میں بھی بہتری ہے. کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت یعنی کہ ترقی پر ہے, میں ترقی پر نہیں ہوں اتنا, تو یہ حسد پیدا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کمال کو زوال ہے. جو بھی کمال ہوتا ہے نا, جو بلندی ملتی ہے جس کو, یہ ایک دنیاوی مثال ہے کہنے کی, ہر کمال کو زوال ہے. تو اس کو پڑتی بھی اس پر آتی ہے. دیکھو اب حسن و جمال ہے, ہٹا کٹا نوجوان ہے, دیکھ کر آدمی رشک کرتا ہے کہ کب تک ہٹا کٹا رہے گا, اگر یہ جی گیا تو پھر کیا ہوگا, اب وہ اس کی باڈی ختم ہو جائے گی. اب یہ کھال ادھر سے کھال لٹک رہی ہے, چوریاں پڑ گئی چہرے پہ, کمر جھک گئی, بڑھاپا تو آتا ہے نا, آدمی زندہ رہتا تو بڑھاپا تو آتا ہی ہے اس کو. تو پھر اب یہ اس کی کہاں ہٹا کٹا پن, اس کی جوانی, اس کا شباب, کچھ بھی نہیں. یہ اس کا کمال کب تھا اس دنیا میں اعتبار سے کہ وہ ہٹا کٹا اور بالکل باڈی بلڈر تھا, لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا اور یوں لٹک گیا بالکل جھک گیا, اب یہ اس کو زوال لگ گیا نا, یہ گیا اس کا کمال ختم ہو گیا. تو یوں ہر کمال کو زوال ہے. اپنے طور پر اس طرح یہ کہ ذہن بنائے کہ میں اللہ تعالی کی تقسیم پر کیوں اعتراض کروں, اللہ نے اس کو جو بھی دیا صحیح ہے, مجھے کم دیا ہے بھی صحیح ہے, میں بہت کمزور ہوں, میں اللہ تعالی کی سزا دی ہوئی سزا اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا, اگر حسد کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں کیا کروں گا. تو یوں اپنے آپ کو ڈراتا رہے گا تو حسد کم ہوتا چلا جائے گا. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارا علاج کر لیا کسی نے حسد کا, اب بھی اگر اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ دل کو بھی مطلب اس کو بھی ٹالتا ہے, پھر بھی اب کیفیت اگر کسی کو پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نعمت پر اس کے خواہش نہیں کرتا کہ اس کو زوال لگ جاتا, اب اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. دل میں خیال آ جانا اس میں آدمی کا کیا قصور ہے, خواہش کرنا, خیال آیا, اب خواہش بھی ہوئی کہ واقعی یہ جوان ہے اور یہ ہٹا کٹا ہے, میں کمزور ہوں تو اس کو بھی کچھ چوٹ آ جائے یا اس کو کوئی شیر کا سوا سیر مل جائے جو توڑ پھوڑ ڈالے اس کو وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح وہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. हसद के मुतालिक रिसाला शैतान के चार गधे मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला ये ज़रूर भी ज़रूर हासिल कीजिए। खाली हसद ही का नहीं है बयान उसमें, और भी बहुत सारे मदनी फूल हैं, अब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। धोखे के बारे में भी है उसमें बहुत बहुत मवाद है, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह काम आएगा। अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ से भी एक रिसाला हसद मुरतब हो गया।
बापा जान एक कॉन्सेप्ट है कट थ्रो कंपटीशन का, बिजनेस के अंदर यानी जो मुख्तलिफ बिजनेस इदारे होते हैं वो आपस में इस तरह से डील कर कि फुला का कस्टमर टूट कर ये हमारी तरफ आ जाए, तो इस बारे में भी कुछ मदनी फूल इनायत हो जाए। कुछ लोगों की जॉब भी इस किस्म की होती है कि कस्टमर तोड़ तोड़ कर अपने इदारे की तरफ लाना होता है।
ये तो बहुत आम है, उसको बहलाने के लिए सस्ता देगा, उम्दा देगा और किसी तरह भी अगले से तोड़ देगा इसको, फिर भले बाद में लूटता रहे इसको, कि शुरू में इस पर ये इस तरह इंफरादी कोशिश करेगा और करेगा। ये सारा जो है ना ये इसको हसद का नाम तो नहीं देंगे, ये सिर सही अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने के जज्बे के तहत वो ऐसा कर रहा है, ये भी इधर बुरी बात है। हसद की तारीफ पर नजर रखेंगे ना, हसद वो है कि अगले की नेमत का जवाल हो जाए। अब बाजों ने तारीफ की है कि हसद ये है कि अगले की नेमत छिन जाए उससे और मुझे मिल जाए, मगर आला हजरत ने मुझे मिल जाए ये नहीं लिखा, तो अगले की नेमत छिन जाए ये लिखा है। तो अब ये जो यहाँ ये आला हजरत की लिखी हुई तारीफ मैंने खुशकिस्मती से कार्ड लगा हुआ है, हसद की तारीफ किसी की नेमत छिन जाने की आरजू करना, ये फतह रज़ी में ये तारीफ लिखी है हसद की। तो अब यहाँ ये जो व्यापारी ये कर रहा है ना, ये हसद की वजह से नहीं कर रहा, ये हिर्स की वजह से, दौलत की हवस की वजह से अपने भाई को ये नुकसान पहुंचा रहा है, पर ये हिर्स में आएगा लालच हिर्स, ये भी बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। अपने भाई की खैरख्वाही करनी चाहिए, मुसलमान की भलाई करनी चाहिए, जैसा कि वो सैयदी कुतुब मदीना का वाकया है कि आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि या सैयदी पहले के अहले मदीना कैसे थे, तो मेरे आका मेरे मुर्शिद सैयदी कुतुब मदीना ये तुर्कों के दौर से मदीना शरीफ में हाजिर थे, तो आपने फरमाया कि पहले के ताजिर का एक वाकया सुनाया कि एक कपड़े के व्यापारी के पास, मदीना शरीफ का कपड़े का व्यापारी था, उसके पास कोई हाजी गया कि मुझे इतना इतना कपड़ा चाहिए, तो वो अच्छी मिकदार में उसने मांगा, तो ताजिर ने कहा कि आप जो मांग रहे हैं वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज बिक्री काफ़ी हो गई है, तो मैं सामने दुकानदार को देख रहा हूँ कि बेचारे का आज वो धंधा नहीं हो रहा, तो आप मेरी ख्वाहिश है कि आप वहाँ से खरीद लीजिए। सैयद कुतुब मदीना ने फरमाया कि पहले के अहले मदीना ऐसे थे और अब के आजकल के अहले मदीना ये आप देख रहे हो कैसे। तो अब वहां भी दुकानदारों में जो देखा जाता है हर जगह मुकाबला, ठगी और सब कुछ हो रहा है, लूट मार, सीजन आता है ये खुश हो जाते हैं कि अब लूटने का जमाना आया, महंगा कर देना माल और सब सब हो रहा है, गाड़ियों वाले किराए ऐसा दो हाथ से हाजियों को जैसे ना लूट रहे हो, बहुत बहुत बुरी हालत है। वो नरमी भलाई हमदर्दी रिस्पेक्ट ये बहुत कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, ये बहुत बहुत कम हो गया। अल्लाह ताला बस सबके हाल पर रहम करे। तो गुस्सा जो होता है ना ये असल वो अंदर से उठने वाली इंतकाम की आग होती है, अपने मिजाज के खिलाफ जब कोई बात हो जाती है तो इसमें दो सूरतें जिनकी पजीराई है वो ऐसी है कि ऐसों की कि जिनको गुस्सा बहुत देर में आए और जल्दी चला जाए, और उनकी मजम्मत की गई हदीस शरीफ में कि जिनको गुस्सा जल्दी आए और देर में जाए। तो अब ये कि जिसका गुस्सा नहीं जा रहा तो वो अपना खुद गौर फरमा ले के हदीस शरीफ में ऐसे शख्स को अच्छा नहीं जाहिर किया गया। अब ये गुस्से की कैफियत एक कल्बी कैफियत होती है, और ये जल्दी न जाने की शायद वजह यह भी हो कि वो इस पर गौर करते रहे हूँ। बाज लोग लिख लेते हैं जब, यानी कि किसी कोई बात बुरी लग जाती है तो लिख लेते हैं कि मौके पर छोड़ूंगा नहीं, इसको याद रहे ताकि तुमने यूं भी बोला था, यूं भी किया था, मेरे साथ ये भी सुलूक किया था, उधर डांटा था, उधर झाड़ा था, उधर मेरी बात काटी थी। गालिबन इस तरह भी बात करते हों, ये अपने लड़कपन में या जवानी में मैंने सर नोट किया था कि बात लिखते थे, तो अब भी हो सकता है लिखते हूँ। ये लिखना जो है ना, ये शैतान का भरपूर ताबुन है, इसको बुलाना चाहिए। अगर किसी ने वाकई गुस्सा दिला दिया या ज्यादती कर ली तब भी उसको इग्नोर कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए और इंतकाम ना लिया जाए। कि हम अगर किसी की खता पर इंतकाम लें तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमने भी तो बहुत सारी खताएं की हैं। अगर अल्लाह ताला ने अपना गजब फरमाया तो फिर मेरा ठिकाना क्या होगा। तो गुस्सा हम अपने लिए तो गुस्सा कहेंगे, अल्लाह ताला के लिए गजब का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। गजब के लफ्जी माना गुस्सा भी होता है, तो ये अल्लाह ताला के गजब को याद करे गुस्से वाला। सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात को याद करे कि गुस्से में बड़ा उछलता है, कहीं अब की उछाल तुझे जहन्नम में ना डाल दे। तो गुस्सा आता है तो उस चीज को बुलाना जरूरी है, किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है वहां से हट जाए या उसके साथ कोई हुस्ने सुलूक कर डाले, नेकी करे उसके साथ, नेकी की बरकत से इंशा अल्लाह गुस्सा चला जाएगा। है ये अच्छी बात नहीं है कि इतना अरसा याद रखना, इसका तस्करा करता होगा, जहन में इसको दोहराता होगा। बाद लोगों की आदत होती है कि इन चीजों को सोचते बहुत है, फिर ये अंदर अंदर बल खाते रहते हैं और मौके के मुतलाशी रहते हैं, जब भी मौका मिला मैं इंतकाम लूंगा। तो ये मजमूम सिफत है, ये मजमूम सिफत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुआफी दरगुजर से काम लेना चाहिए, इसके फजाइल भी बहुत है। तो मुआफी दे देने से इज्जत बढ़ती है घटती नहीं है, हदीस शरीफ में मजामिन मौजूद है। जो तो बंदे को माफ करेगा अल्लाह ताला भी उसको माफ फरमाएगा। अफ़्फ़ो दरगुजर, अब तो अल्लाह ताला से माफी मांगने के दिन है ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ये हदीस शरीफ की दुआ है बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। जब ये अर्ज किया कि अगर लैलतुल क़द्र को पालूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं, तो ये दुआ इरशाद फरमाई हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। ये हदीसों के मज़ामीन है ये कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ करने को पसंद फरमाता है। फ़ाफ़ु अन्नी, तो मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ताला माफ करने को पसंद फरमाता है और बंदा कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो जब बंदा कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, जाएगा गाने आना तो मेरे ही पास, फिर क्या हो। तो इसलिए बंदों को माफ करना इख्तियार करे, अल्लाह ताला भी हमें माफ फरमाएगा। वो करीम रहीम है, बख्शने वाला गफूर रहीम है, लेकिन वो वाहिद कहार भी है, जब्बार भी है। उसके कहरो गजब से डरे और माफ करना इख्तियार करे। इंतकामी कार्रवाई नहीं, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि मैंने किसी मुसलमान से इंतकाम लेना ही नहीं। लेट्स ऑल, गुस्सा आ गया उसको जब्त करे, उसको पिए। गुस्सा नाफिज करने जाता है, और अगर गुस्सा गुनाह के जरिए नाफिज किया तो फिर ऐसों के लिए तो जहन्नम का दरवाजा मखसूस है कि उसमें से वही लोग जहन्नम में दाखिल होंगे कि जिनका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता हो। ये तो बहुत बुरी बात है ना, अच्छी बात तो नहीं है। तो गुस्सा आ जाता है, चुप हो जाए, अऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़े, वहां से हट जाए, इस तरह गुस्से का इलाज करे, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा है तो जमीन से लिपट जाए, चिपट जाए, वुजू कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुस्सा ठंडा होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहू अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। जुल्म को सहना जुल्म है, ये जुमला तो बिल्कुल ही गलत है। जुल्म को सहना तो बाईस अजर सवाब है। हदीस शरीफ में तो इसके बड़े फजाइल हैं, जैसे कि जो चाहता है मजमून हदीस शरीफ का, जो ये चाहता है कि क़यामत का हिसाब उस पर आसान हो और अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाए, तो उसे चाहिए कि जो इस पर जुल्म करे वो इसको माफ़ कर दे, जो इससे महरूम करे वो इसको अता कर दे, जो तोड़े उससे जोड़े। तो अब हदीसों में मुआफ़ी देने वाले के लिए फजीलत मौजूद, और अब ये बंदा जो है ये कैसी बात कर रहा है कि जुल्म सहना भी जुल्म है। ये मुकूला गलत, सवाल गलत, और इससे इनको रुजू करना चाहिए। मुसलमान को ऐसी बात जबान पर नहीं लेनी चाहिए। जालिम को बद्दुआ करना मना नहीं है, उसने अब इंतकाम ले लिया, जब अल्लाह ताला को सौंप चुका हो तो अब बदला किस बात का ले रहा है, अब बदला नहीं ले। गुनाह के जरिए जैसे गाली दी, तकब्बुर किया, उस पर तोहमत जड़ दी, ऐब खोल दिया, तो ये गुनाहों के सिलसिले में बद्दुआ देने के तो बहुत सारे वाकियात हैं, बहुत सारी हिकायतें कि बद्दुआएं दी गई हैं जुल्म करने वालों को, और उन पर बद्दुओं के असरात भी देखे गए हैं और वो तबाह बर्बाद भी हुए हैं जुल्म करने वाले। इसलिए मुतलकन बद्दुआ करना इसको तो हम नाजायज नहीं कहेंगे, जबकि कोई और माने शर्वी उसमें ना हो। और दूसरा हिस्सा सवाल का आपने फरमाया, गुस्सा कैसे रोके, चुप रहे, बोलेगा तो अब एक मशरिक में लफ जाएगा, एक मगरिब में जाएगा, गालियां निकलेंगी, खतरा है, फिर ज्यादती हो जाएगी, उसको बुरा भला करेगा, उसको तोहमत रख देगा, गिबत करेगा, उसका ऐब खोल देगा गुस्से में, फिर गुस्सा तो बहुत सारी उसकी हराम की औलाद है, तकब्बुर है उससे ही की औलाद है, वो भी बहुत सारी, मतलब है कि फिर वो हो सकता है गुनाह कबीरा कई कर बैठे, तो इसलिए वो गुस्से में हत्तल इम्कान कोशिश करे कि खामोश रहे, गुस्से में उस बोलने जाएगा तो शायद सही बोल नहीं पाएगा, बहुत रिस्क है। अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और अभी मैंने गुस्से के चंद इलाज अभी अभी अर्ज किए, तो इस तरह उसका इलाज करे, अपना रिसाला जो गुस्से का इलाज वो पढ़े, अगर वहाँ नहीं मिलता तो अपनी वेबसाइट है दावत इस्लामी की, उस पर से हासिल कर ले उसको, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल वो गुस्सा भी दूर होगा, गलत फहमियाँ भी दूर होंगी, सब मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अब ये सवाल तो था ना कि जैसे दीन के बारे में, अब माज़ अल्लाह को इस्लाम ही को बुरा भला कहता है, और ये मुसलमान मुतसव्वर नहीं है कि मुसलमान कोई ऐसा हो जो इस्लाम को बुरा भला कहे, इस्लाम को बुरा भला कहेगा तो जाहिर है कि मुसलमान रहेगा भी नहीं। तो अब ये कह है गैर वाज़े मामला, दीन को बुरा भला कहे, अगर ये ऐसा ही हुआ है कि वाकई कोई इस्लाम को बुरा भला कहता है, दीन को बुरा भला कहता है, तो मुसलमान रहेगा कैसे, शरीयत की तोहीन भी कुफ्र है, दीन की तोहीन भी कुफ्र है, इस्लाम की तोहीन भी कुफ्र है। अब ये कहे गुस्सा तो इस पर तो आना चाहिए, ऐसा ठंडा खून कैसा कि दीन को कोई गाली दे माजल्ला और अपने बिल्कुल मुस्कुराते रहे, ये तो मुमकिन नहीं है ना एक मुसलमान के लिए। अवाम में मकूला है, गलत मकूला, गुस्सा हराम में कहेगा हराम है, बाजू का तो जरूरी होता है गुस्सा आना, 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो इसको मार के पढ़ा हदीस शरीफ में, तो गुस्सा आएगा तो ये मारेगा, हंस के मारेगा, हंस के मारेगा तो बच्चे पर असर क्या पड़ेगा, आंखें दिखाएगा, लाल पीला होगा, और एक आध रख देगा इसकी पीठ पर धप करके, तो फिर वो पड़ेगा ना। इसी तरह रोज़ा, रोज़ा भी मार के रखवाना पड़ेगा 10 साल का बच्चा हो गया तो, जबकि रोज़ा बर्दाश्त करने की कुव्वत हो और इसको ये बीमार ना हो जाता हो रोज़ा रख कर, खाली कयास से नहीं कि बीमार हो जाएगा तो नहीं। 7 साल का बच्चा हो तो नमाज रोजे का हुक्म दे इसको, ये हुक्म देना वाजिब है। और अब 10 साल पूरे कर लिए, 7 साल पूरे कर चुका तो नमाज रोजे का हुक्म दे, 10 साल पूरे कर चुका तो ना करे तो मार के पड़ा। 7 साल वाले को मार के नहीं पड़ाएगा, लेकिन उसको ताकीद करे, उसको हुक्म दे, उसको नमाज पढ़, रोजा रख। लेकिन अफसोस कि बच्चा स्कूल का नगा करे तो मारा मारी कर डालते हैं, नमाज रोजा का कौन बोलेगा? खास बच्चा है ना, बच्चा है, कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। और ये बातें सही नहीं है, रोजा रखवाना चाहिए 7 साल के बच्चे को, पूरे रोजे रखवाने चाहिए 7 साल का बच्चा बच्ची को। हाँ, अगर ये तोड़ दे तो कफारा नहीं है, अगर बहुत भूख से प्यास से वो इन्हें क्या समझो कि एकदम वो मरीज सा बन जाए, निटान सा, अब उसको बेशक खिला पिला दे, वरना रोजा रखवाए उसको, फिर दूसरे दिन रखवाए, फिर अगर इसे फिर खिला दे, इसको आदि बनाए रोजे का।